समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी नमस्कार।
नमस्कार सर फिरोजी, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड सर फिरोजी हैज ऑलरेडी गिवन एन आउटलाइन ऑफ व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन आवर शो टुडे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स इन आवर स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, वी हैव सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिन पे कुछ डिटेल में जानेंगे। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज के, तो थोड़ा सा सस्पेंस कायम रखते हैं
जी।
फर्स्ट लेट्स हियर द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs the 7th meeting of National Board for Wildlife at Junagadh in Gujarat, comments the role of tribal communities and women in preserving the Asiatic lion habitat.
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के विकास को गति देने के साथ डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Supreme Court rules visually impaired persons cannot be denied opportunity of employment in judicial services.
निर्देशक शॉन बेकर की अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 5 ऑस्कर पुरस्कार जीते।
इन जम्मू एंड कश्मीर प्लेन्स एंड अपर रीचेस ऑफ कश्मीर वैली रिसीव रेन एंड स्नोफॉल्स इन अर्ली मॉर्निंग।
और इंडोर शॉटपुट में भारत की कृष्णा जयशंकर 16 मीटर दूर गोला फेंकने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
And yes, now it's time for our special segment, Dateline India, and we are going to talk about two important days today. Well, today is World Wildlife Day and World Hearing Day as well. So first, let's share some trivia related to World Wildlife Day. And I begin, open this segment with the Gary Snyder's quote, "Nature is not a place to visit, it is home." Yes, so please be the voice of the voiceless. United Nations World Wildlife Day is celebrated every year on 3rd of March to spread awareness about the conservation of wild animals and plants.
जी सायरा, हर साल पूरी दुनिया में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सायरा, वन्य जीव इंसानों और प्रकृति दोनों के लिए कितने जरूरी हैं ये हम सभी जानते हैं। जहां एक ओर ये प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं, तो वहीं ये हमें साफ हवा और पानी उपलब्ध कराते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाते हैं। सायरा, अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि किसी पहाड़ी इलाके में या किसी ऐसी जगह पर जहां बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हो जाती है, तो वहां भूस्खलन का खतरा बहुत बढ़ जाता है, बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोक कर रखती हैं, जिसके कारण इरोजन नहीं होता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वन और वन्य जीव हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और वहीं कुछ जीव जंतु हैं जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल ही विकसित हुए हैं और इनका जीवन तब तक सामान्य रूप से चलता रहता है जब तक पर्यावरण अनुकूल है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि इंसान ने प्रगति के दौरान जाने अनजाने में इस पारिस्थितिकी तंत्र को न सिर्फ असंतुलित कर दिया है, बल्कि इसके कारण कई जीव जंतु संकट में आ गए हैं। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य भी दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
Absolutely, Sir Firozi, and as you rightly point out, that you know, the flora and fauna is important for us and not the other way around. So we should, it's high time we realize the importance, the role that they play in, you can say, in preserving life as a whole. And जैसे कहते हैं ना कि नेचर में खुद इतनी ताकत है कि वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेगा. सो वी आर नॉट हियर टू से सेव नेचर बट सेव योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू विल थिंक अबाउट योर सेफ्टी देन यू विल केयर अबाउट नेचर. बिकॉज एक टाइम अगर आएगा, अगर आपने बहुत ज्यादा केयरलेस होके, रूथलेस होके नेचर का एक्सप्लॉयटेशन किया, तो यू नो द नेचर विल डेफिनेटली टेक रिवेंज. एंड व्हेन नेचर टेक्स रिवेंज, इट्स लाइक एवरीथिंग द मैनकाइंड विल बी स्वेप्ट ऑफ. सो नेचर इज वेरी पावरफुल, नो डाउट, बट वॉट वी शुड worry about is our own safety. That means if you're worried about your own safety, you will not exploit nature, rather you will conserve it. And on this day, on 20th December 2013, at the 68th session of the UN General Assembly, 3rd of March was declared as UN World Wildlife Day. This day holds significance as the day that the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora was signed in 1973. The UNGF resolution designated the site's secretariat as the facilitator for global observance of this special day for wildlife on the UN calendar, and UN World Wildlife Day has now become the global annual event dedicated to wildlife.
और सायरा, हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, छोटी से छोटी ज़रूरत और बड़ी से बड़ी ज़रूरत, उन सभी के लिए हम वन्य जीवन और जैव विविधता आधारित संसाधनों पर निर्भर हैं. चाहे खाना हो, फ्यूल हो, दवाएं हो, आवास हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि जो सांस भी हम ले रहे हैं वो प्रकृति की ही देन है.
Absolutely, and that's that truly you can say, you can get an idea of how dependent we are on nature. So please take care in conserving it. And wild animals and plants, whether from the highland steppes to the coral reefs, they are intrinsic to the intricate web of life on planet Earth. They sustain ecosystems, regulate natural processes, and supports biodiversity, providing essential services that underpin human livelihoods and contribute to the achievement of our sustainable development goals. And you'd be surprised to know that forests alone house 60,000 tree species, 80% of amphibian species, and 75% of bird species, while supporting over 1.6 billion people with natural capital in the form of food, medicine, and income.
और भारत के बारे में बात करें तो यहाँ 500 से अधिक स्तनपाई प्रजातियों और 2000 पक्षी प्रजातियों का घर है, जो हमें पारिस्थितिक रूप से सबसे विविध देशों में से एक बनाता है. पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से है.
That's right, Sarfirozi, and some more interesting facts related to wildlife about India. That let's tell our listeners that India hosts over 75% of the world's wild tigers. India has 106 national parks, 564 wildlife sanctuaries, and 99 conservation reserves, covering nearly 5% of the country's total land area. And still this is not much. तो एक पहल होती है, एक कोशिश हमेशा रहती है कि इस कवर को हमेशा बढ़ाते रहें. अगर बढ़ा ना पाए तो कम से कम डिमिनिश ना होने दें, उसको सस्टेन करें उतना
जितना है. बिल्कुल सायरा, और भारत ने बाघों को बचाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं. कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि बाघों का संरक्षण किया जा सके, और इन्ही प्रयासों का नतीजा है कि बाघों की जो संख्या है वो 3500 से अधिक हो गई है पिछले एक दशक में. और इसके लिए कई कोशिशें की गई, चाहे वो वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना हो, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करना हो, और इसके अलावा समय समय पर बाघों की जनगणना कराई गई. वहीं सरकार बाघों के संरक्षण के लिए कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ताकि लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके इस जानवर की आबादी फिर से बहाल हो. और इसके अलावा सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए भी प्रोजेक्ट लॉयन को मंजूरी दी है. हालांकि सायरा, भारत ने बहुत प्रयास किए हैं इन चुनिंदा प्रजातियों को लुप्त होने की कगार से पीछे लाने के लिए, लेकिन फिर भी IUCN के रेड लिस्ट में भारत की 1200 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गैंगेटिक डॉल्फिन भी शामिल हैं. और सायरा, ये तो मतलब कुछ बहुत ही संकटग्रस्त और हमसे कह सकते हैं कि दूर रहने वाले पक्षी या जंतु हैं. हम अगर अपने आसपास भी देखें तो कुछ ऐसी पक्षी थे, ऐसे जानवर थे जो हमारे आसपास रहते थे पर अब नहीं नजर आते हैं. इसका छोटा सा जो उदाहरण है वो गोरैया को ले लें.
Absolutely,
जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती थी तो हमारी जो सुबह होती थी वो गोरैया की चहचहाने से ही शुरू होती थी, लेकिन अब अगर नजर उठा के देखेंगी तो वो आसपास नजर ही नहीं आती है.
दैट्स वेरी राइट. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस, स्पेशली इन द सिटीज, बिकॉज ऑफ यू कैन से इनडिस्क्रिमिनेट एंड रूथलेस डेवलपमेंट, जिसको डेवलपमेंट क्यों ही कहा जाता है, आई स्टिल वंडर, बिकॉज डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट कॉन्क्रीट एंड मोर्टर एंड सीमेंट, बट इट इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज ट्रू डेवलपमेंट. एंड जैसे आपने कहा, अब स्पैरोज तो दिखती नहीं है, एंड स्पैरोज, द साइटिंग ऑफ स्पैरोज, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग इंडिकेटर ऑफ हाउ यू नो इफ देर इज इकोलॉजिकल बैलेंस इन दैट पर्टिकुलर रीजन और नॉट. एंड मेनी फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन ऑफ सच वाइल्ड लाइफ. दे इंक्लूड पोल्यूशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, नाइट्रोजन पोल्यूशन, दे ऑल एड टू देयर डिक्लाइन.
बिल्कुल सायरा, और 1,000,000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं. तो हम कह सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो अब तेजी से हमें कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये खतरा अब हमारे बहुत नजदीक पहुंच चुका है और बहुत बड़ा रूप ले चुका है.
That's right. More than half of the world's GDP is dependent on nature, making biodiversity loss a significant threat to financial stability. For example, fisheries contribute over 10% of GDP in some countries, yet over 1/3 of marine fish stocks are overfished, leading to unemployment, disrupted economies, and illegal harvesting practices. And if we talk about, the UN Development Programme Administrator, A. Kim Steiner, said that the survival of wildlife and wild spaces they inhabit are indeed the vital markers of a thriving world and a flourishing future for all life on the earth.
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस पर गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासनगीर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की. बोर्ड की बैठक में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. ये बोर्ड वन्यजीवों तथा वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जूनागढ़ में वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी और 16वीं एशियाई शेरों की जनगणना 2025 का भी शुभारंभ किया. उन्होंने कोयम्बटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन केंद्र का भी उद्घाटन किया. बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लिया. प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु फील्ड स्टाफ के लिए पेट्रोलिंग बाइक को भी हरी झंडी दिखाई.
एंड हियर इज रैपिंग अप द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेटलाइन इंडिया. दिस डे सर्व्स एज अ ग्लोबल रिमाइंडर ऑफ द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी एंड इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल कंजर्वेशन एफर्ट्स. सो लेट्स सेलिब्रेट वाइल्ड लाइफ एंड द इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन वर्क दैट इज बीइंग डन अराउंड द वर्ल्ड. And now the second topic is, as I had mentioned, is on World Hearing Day. Hearing is a gift. Embrace the whispers of nature and the laughter of loved ones, because every sound tells a story. Cherish the melodies of life.
जी बिल्कुल. और विश्व श्रवण दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में कान और श्रवण देखभाल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है.
Yes, this day was first observed on 3rd of March in 2007 when the first international conference on prevention and rehabilitation of hearing impairment was hosted in Beijing, China. The delegation emphasized the significance of raising awareness about hearing impairment and observed that day as the International Ear Care Day. Later in 2014, WHO declared 3rd of March World Hearing Day. And if we wrap up this segment as well, there are certain things that we can probably do to, you can say, to conserve, to not cause a hearing impairment. And we all know that we should stay away from loud noises. और आजकल आप नजर उठा के देखें तो हर इंसान के कानों में bloopers लगे होते हैं. आप उनसे कहते रहिए hello hello and then people say oh yeah are you talking to me.
और इसके अलावा जो एक चीज मुझे अजीब लगती है, अक्सर हम लोग traffic में होते हैं और हमें पता है कि जो हमारे आगे वाला व्हीकल है उसके पास जगह ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए, इसके बावजूद हम लोग हॉन्किंग करते रहते हैं. तो ये भी एक तरह से नॉइस पोल्यूशन में एक तो योगदान देता ही और इससे भी हमारी जो श्रवण क्षमता है वो प्रभावित होती है.
एब्सोल्युटली. आपने तो ट्रैफिक की भी बात की, मैंने तो रेड लाइट सिग्नल पे लोगों को हॉन्क करते देखा. आई वंडर व्हाई आर पीपल हॉन्किंग एट रेड लाइट सिग्नल्स. एंड एनीवे, दैट्स हाउ पिक्यूलियर वी ह्यूमन रेस आर एंड दैट इज व्हाई प्रोबब्ली वी आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग.
अपने किए का भुगतना पड़ता है. बिल्कुल.
यस.
श्रोताओं, अब समय है कि आपको परिक्रमा पर लेकर चलें देश की और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानें कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। सायरा, कहां से शुरू कर रहे हैं?
यस, वी आर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ परिक्रमा फ्रॉम अप नॉर्थ इन लद्दाख। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल इन लद्दाख, फ्रेश स्नोफॉल इन करगिल हैज ब्रॉट मच नीडेड रिलीफ टू द रीजन। एज प्रेडिक्टेड बाय द IMD, स्नोफॉल स्टार्टेड अर्लियर दिस मॉर्निंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, improving water availability for agriculture and daily use. We have a report.
The snowfall has covered the region in a white blanket, lifting the spirits of local. However, it has also caused travel disruption. The Kargil-Srinagar National Highway and the Kargil-Zanskar Highway have been closed due to heavy snow accumulation, and authorities have advised residents to avoid unnecessary travel. In response to the situation, the district administration has set up a 24/7 control room at the DC office, Kargil, to monitor weather conditions, road clearance and emergency assistance. Snow clearance operations are already underway and essential services including power and water supply are being closely monitored. While locals have welcomed the snowfall after an unusual dry winter, authorities have urged people to remain cautious as temperatures are expected to drop further. Residents are advised to stay updated with official advisories and avoid venturing into snow-covered or avalanche-prone areas. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
समुदाय विकास से रचनात्मक उद्यमिता की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव में अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन की एक पूर्व कर्मचारी कुम्हार कला की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। किपा मरियम, जो कभी ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही थी, अब एक नई यात्रा पर निकल पड़ी हैं, जो उनके लिए एक व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण और कलात्मक रूप से संतोषजनक है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के गुमतो की सात वादियों में स्थित एक छोटा सा कुम्हार स्टूडियो न केवल मिट्टी के बर्तन बना रहा है बल्कि सपनों को भी आकार दे रहा है। 2023 में कीपा मनियम द्वारा स्थापित अन्या पोत्री स्टूडियो उसकी मां को समर्पित एक पहल है और उनकी रचनात्मक आकांक्षाओं का प्रतीक भी। समाज शास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली मनियम अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की पूर्व कर्मचारी थी। मनियम कहती है कि उनका कुम्हार कला तक का सफर पारंपरिक नहीं था, लेकिन उनके जुनून ने उन्हें इस कला को पूरी तरह अपनाने के लिए प्रेरित किया।
मी एज अ पर्सन, हम हमेशा से हमको कुछ कुछ नया नया चीज करने का मतलब इच्छा था हमेशा से। मेरे पास बहुत सारा हॉबी भी है, तो पॉटरी भी वैसे ही था। जैसे हम लोग वीडियोस में देखते हैं, टीवी में देखता था, तो तभी से हमको हमेशा से पॉटरी के लिए वो एक क्यूरियोसिटी था कि कैसा बनता है, कैसा फील होता है बनना। तो स्टार्ट तो वैसे ही हुआ था। मेरा फर्स्ट जब हम पॉटरी फर्स्ट ट्राई किया था, हमेशा से सीखने का मन था, लेकिन यहाँ पे जैसे अरुणाचल में तो हम लोग कुछ ऐसे पॉटरी स्टूडियो करके नहीं था। तो मेरा 2023 में मेरा बर्थडे में हम खुद को एक पॉटरी क्लास गिफ्ट किया था, तो उसी से मेरा मतलब वो एक 2 आवर्स का क्लास था, तो उसी से हम मेरा फर्स्ट पॉटरी का साथ वही था क्लास, और उसका बाद में और हम हिमाचल प्रदेश धर्मकोट स्टूडियो से सीखा था।
अन्या पोत्री स्टूडियो के माध्यम से मनियम न केवल सुंदर हस्त निर्मित कलाकृतियां बना रही है बल्कि क्षेत्र में उद्यमिता की भावना को भी बढ़ावा दे रही है। आने वाले समय में मनियम अपने स्टार्टअप का विस्तार करने, कार्यशालाएं आयोजित करने और कुम्हार कला को एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में बढ़ावा देने की योजना बना रही है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
Now we are going down south to Telangana, where the Telangana Board of Intermediate Education has announced a 5-minute grace period for students arriving late to the intermediate public exams, commencing from Wednesday. Now the students will be allowed entry into the examination hall till 9 hours 5 minutes instead of the previously stated 8:45 a.m. deadline. Let's hear more from our correspondent.
The authorities of the Board of Intermediate Education in Telangana, which is equivalent to plus 1 and plus 2 in some parts of the country, have decided to provide grace time of 5 minutes for attending the examination. The authorities have set up 1532 examination centers across the state, as nearly 10 lakh students, including 4,88,000 of them are of the first year, means plus 1 students, to appear for their annual board examinations commencing from Wednesday. The norm of not even 1 minute late, used to be in force for all board examinations and entrance examinations in Telangana. There were several instances where the students could not write the exam after so much of preparation as they reached the exam center late by 1 minute. Considering the hardships of these students and difficulties and psychological stress what they are undergoing, the authorities have changed the norm for the intermediate examinations this year. Meanwhile, the board also integrated QR code embedded with the location of the center into the hall tickets to assist students to locate their centers with ease. A toll-free number and district control room in charge number have also been printed on the hall tickets. In view of the expected daytime temperatures likely to be around 40 degrees Celsius during this month, the authorities also adjusted the time of the examination to 9 a.m. Lakshmi, Akashwani News, Hyderabad.
और अब बात खेलों की. भारत की कृष्णा जयशंकर 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं. उन्होंने इंडोर शॉटपुट में 16.03 मीटर का आंकड़ा हासिल किया. 22 वर्षीय कृष्णा ने 15.54 मीटर का पिछला भारतीय इंडोर रिकॉर्ड तोड़ा. पूर्णा राव राणे ने 2023 अमरीकी एथलेटिक कॉन्फ्रेंस इंडोर चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड बनाया था. कृष्णा जयशंकर अंतिम दौर से पहले चौथे स्थान पर थी. उन्होंने अपने अंतिम थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता.
And now time for business news. Well, Indian stock market Sensex ended with modest losses while Nifty settled on a flat note. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, dropped 112 points to close at 73,086, and National Stock Exchange Nifty 50 fell marginally by 5 points to settle at 22,119. And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
We remember nationalist, industrialist Jamshedji Nasarwanji Tata, who was born on the 3rd of March 1839 in Navsari, Gujarat. He was a patriot and a humanist whose ideals and vision shaped the exceptional business conglomerate of Tata.
The Swadeshi movement did not start until 1905, however, Tata represented these same principles throughout the time he was alive. Jamshedji was convinced that Indian companies could compete against the prevailing British dominance of the textile industry. In 1869, he acquired a dilapidated and bankrupt oil mill in Chinchpokli, Bombay, and converted it into a cotton mill.
Jamshedji went on an extended visit to England and conducted an exhaustive study of the Lancashire cotton trade. On the 1st of January 1877, the day Queen Victoria was proclaimed Empress of India, the Empress Mills came into existence in Nagpur. At the age of 37, Jamshedji had embarked on building many textile mills and other projects.
From about 1880 to his death in 1904, Jamshedji was consumed by what has to be the three great ideas of his life: setting up an iron and steel company, generating hydroelectric power, and creating a world-class educational institution that would tutor Indians in the sciences. The Taj Mahal Hotel in Bombay was one of the ventures that did bear fruit while Jamshedji was alive.
Legend has it that Jamshedji set his mind on building it after being denied entry into one of the city's hotels for being an Indian. Indeed, it can be said that Jamshedji Tata employed the wealth he created to enrich India and her people. We salute the great patriot.
We also remember freedom fighter and one of the greatest Urdu poets, Raghupati Sahai, better known by his pen name Firakh Gorakhpuri, who died on the 3rd of March 1982. He left his position of deputy collector to follow the independence struggle under the influence of Mahatma Gandhi.
Firak Gorakhpuri was born on the 28th of August 1896 in Gorakhpur, Uttar Pradesh. He showed signs of excellence in Urdu poetry from an early age. And despite his contemporaries, including famous Urdu poets like Allama Iqbal, Faiz Ahmed Faiz, Kaifi Azmi and Sahir Ludhianvi, he was able to make his mark in the field.
He was selected for the Provincial Civil Service and the Indian Civil Service, but on hearing Mahatma Gandhi from the ground of Bhale Miah on February the 8th, 1921, he left his government job and jumped into the freedom movement. He joined the non-cooperation movement and was jailed for 18 months. He wrote couplets of revolutions such as
Dekh raftare inqilab firaq, kitni ahista aur kitni tez.
And now if we remember some more personalities today, well, unka naam batane se pehle unki awaaz sunte hain.
अक्सर लोग रास्ते में रोककर हमें पूछते हैं कि आप उल्टा पुल्टा के लिए आइडियाज कहाँ से लाते हो, तो बड़ी शर्म आती है उन्हें बताते हुए, बस ये इधर उधर से चोरी किए होते हैं, कहीं से कोई चुटकुला सुना, तोड़ मरोड़ कर टीवी पे सुना दिया। लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ कि इसमें शर्म की क्या बात है। आजकल के जमाने में सफल लेखक है ही वही जो इधर उधर से बल्कि हर भाषा का लेख चोरी कर सके। इसी तरह सबसे बढ़िया संपादक वही है, एडिटर वही है जो कई एडिटोरियल्स को मिलाकर एक एडिटोरियल बना दे।
Yes, that is the very, very memorable voice of Jaspal Bhatti, a very renowned television personality of yesteryears who was known for his satirical take on the problems of the common man. And he was most well known for his television series Flop Show, Full Tension and Ulta Pulta, jiska bhi hum log ne jingle sunaya. And it ran on Doordarshan in the late 80s and early 90s.
और आज हम संगीतकार रविशंकर शर्मा को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया रवि के नाम से जानती है। बतौर संगीत निर्देशक उन्होंने 1955 में फिल्म वचन से अपना सफर शुरू किया, लेकिन 1960 में आई गुरुदत्त की क्लासिक फिल्म चौदहवीं का चांद ने इनकी किस्मत पलट दी।
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो।
Yes, Ravi was one of the music directors who also shaped the career of Asha Bhosle with songs like Aage Bhi Jaane Na Tu and Sun Le Pukarai. He was also instrumental in making Mahinder Kapoor a popular singer. And after a successful career in Hindi films during the 50s and 60s, he took a long break after 1970 till 1982. And in 1982, he gave music for the Hindi film Nikah, aur jiska bahut hi iconic song tha Dil Ke Armaan Aansuon Mein Beh Gaye, that won Salma Agha the best female playback award. But let's listen to this song in Asha Bhosle's voice.
बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू।
आज भारतीय गायक और संगीतकार शंकर महादेवन का जन्मदिन है। ये भारतीय फिल्मों के लिए संगीत लिखते हैं। 2023 में इन्हें बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। महादेवन को कर्नाटक, हिंदुस्तानी और जैज के मिश्रण के साथ एक इंडी पॉप स्टार के रूप में शुरुआती प्रसिद्धि मिली। उस समय उनका गैर फिल्मी एल्बम ब्रेथलेस 1998 में भारतीय संगीत चार्ट में शीर्ष पर रहा।
की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, महकी हुई सी अब सारी हवाएं है, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तू पाए हो, तो नगमे है, आंखों में सपने है, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे है, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उस पाया था।
Yes, indeed. What a breathless song it is indeed, penned by Javed Akhtar. And Shankar Mahadevan, along with Ehsan Lloyd, the trio, composed very nice songs for the film Dil Chahta Hai.
Kabhi na bite chamkile din, चाहता है हम ना रहे कभी यारों के।
और श्रोताओं जी, तो हमारा भी चाहता है कि हम आपके साथ बने रहें, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे अनुमति ली जाए। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा मुश्तबा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।